हरे कृष्ण। बलराम जी भगवान के शाश्वत सहचर हैं। राम के साथ लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के साथ बलराम के रूप में तथा चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में वे सदैव भगवान की हर लीला में उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के सेवक स्वरूप हैं। उनका सदैव एक ही लक्ष्य रहता है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हमें श्री बलराम तत्व, उनके प्राकट्य तथा ब्रज में उनकी लीलाओं के विषय में हमें बताएंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। वह विभिन्न कॉलेजों तथा कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के पश्चात जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मल्लावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अनेक मधुर व दिव्य लीलाओं के अमृत सागर श्री बलराम जी के विषय में श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बलराम जी की लीलाओं को वैसे तो वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं है। हम सब भी जिन लीलाओं का वर्णन करते हैं, हम लोगों ने सुनी हैं आचार्यों से, शास्त्रों से, तो थोड़ा बहुत उसका वर्णन करने का प्रयास करते हैं। बलराम जी का विवाह हुआ रेवती से। इसकी लीला बड़ी सुंदर है। रेवती के पिताजी जो महाराज रेवत थे, तो वे देख रहे थे, ये बहुत पुरातन काल की बात है, हजारों हजारों युगों वर्ष पहले, तो वे देख रहे थे कोई अच्छा वर अपनी पुत्री के लिए मिला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी से पूछाते हैं कि क्या कौन है इसके लिए उपयुक्त वर, कोई ढूंढिए आप। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। देखिए, कभी कभी हम लोग अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, लोग तो कभी कभी भगवान के पास भी आते हैं। तो क्या हमें भगवान के पास इन कार्यों के लिए जाना चाहिए? देवी देवताओं के पास तो ठीक है, व्यक्ति भौतिक कामना से ही जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कामस्तस्तहत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिन लोगों के बुद्धि काम के द्वारा हर ली गई है तो वे लोग जाते हैं। क्या भगवान के पास हमें इच्छा ऐसी इच्छाएं लेकर आना चाहिए? तो शास्त्र कहता है क्यों नहीं। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। ऐसा कहा गया है कि अकामो, अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, या फिर सर्व कामो इच्छाओं से भरा हुआ हृदय है, या फिर मोक्ष की कामना है, ऐसे तीनों प्रकार के व्यक्तियों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में इच्छा है, अगर वो इच्छा लेकर भगवान के पास आता है तो फिर हृदय शुद्ध हो जाता है। भगवान उसकी इच्छा की कभी पूर्ति करते हैं कभी नहीं करते, लेकिन दोनों अवस्थाओं में हृदय को शुद्ध कर देते हैं, जो ज़्यादा आवश्यक है। तो खैर, अपनी पुत्री रेवती को लेकर चले गए ब्रह्मा जी के पास महाराज रेवत। और वहां पहुंचे तो ब्रह्मा जी कुछ व्यस्त थे, थोड़े समय रुकना पड़ा उनको बाहर, तो थोड़े समय रुके रहे और फिर ब्रह्मा जी से मिले। और ब्रह्मा जी से कहा कि आप बताइए मेरी पुत्री के लिए कोई अच्छा वर इस समय कौन है। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहने लगे, महाराज आप जब आए थे पृथ्वी से और अब तक के समय में, हालांकि बहुत थोड़ा समय रुके थे, लेकिन ब्रह्मा जी का थोड़ा समय भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा, अब तक तो कई युग बीत चुके हैं, जिनके नाम आप ले रहे हो, जिन राजाओं के, जिन राजकुमारों के, वो तो कब के मर चुके हैं, तो फिर अब क्या किया जाए। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, अभी जाओ तुरंत नीचे और वहां पर भगवान स्वयं हैं बलराम जी के रूप में, तो उनसे अपनी पुत्री का विवाह करो। तो फिर तुरंत वे आए नीचे, बलराम जी के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का आदेश है कि मेरी पुत्री का विवाह आपसे हो। तो बलराम जी ने देखा, अब ये पुत्री जो थी और पिता जो थे, ये पूर्व युग के थे, तो पूर्व युग के कारण बहुत ऊंचे थे। ऐसा वर्णन किया गया है शास्त्र में कि जैसे जैसे युग बदलता है तो वातावरण बदलते हैं, लोगों की चेतनाएं बदलती हैं, लोगों की आयु बदलती है, लोगों के शरीर बदल जाते हैं। अर्थात पहले जो शरीर लोगों के हुआ करते थे, बड़े विशाल शरीर, अब धीरे 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 छोटे होते जाते हैं। या फिर आयु भी, जैसे कलयुग के लिए कहा गया है कि इसमें लोगों की आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रितः। तो भाग्य भी मंद होगा, बुद्धि भी मंद होगी, उम्र कम होगी। जैसे हम देख ही रहे हैं, धीरे 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 लोग बड़ी जल्दी उम्र में मरते जा रहे हैं। चाहे हमारे विज्ञान ने बड़ी प्रगति कर ली है, लेकिन लोगों की उम्र कम होती जा रही है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो खैर, उस समय में लोग बहुत लंबे ऊंचे होते थे। तो बलराम जी ने देखा, क्योंकि बलराम जी इस समय के थे और उन्होंने देखा कि बहुत लंबी है, तो फिर उन्होंने अपना हल लिया और रेवती के कंधे पर रखा और ऐसे नीचे खींच दिया उसको। और फिर वो उनके जितना आकार था उतनी हो गई और फिर उन्होंने विवाह किया। जब हम लोग ये सुनते हैं तो मन में आता है, क्या ये संभव है? अरे, इतने लंबे व्यक्ति को क्या कोई ऐसे ही खींच कर छोटा कर सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो फिर हमें पूछना चाहिए अपने आप से, क्या भगवान के लिए कुछ असंभव है? अगर भगवान के लिए कुछ असंभव हो जाए तो फिर वो भगवान कैसे? श्री कृष्ण के लिए, बलराम जी के लिए कुछ चीज असंभव नहीं है। वो तो सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ उनके अधीन है, सब कुछ उनकी इच्छा से चलता है, तो फिर ये छोटी सी चीज क्यों नहीं हो सकती? तो ऐसे बलराम जी ने विवाह किया। महाभारत में भी बलराम जी का बड़े विस्तार से वर्णन है, कई लीलाओं में बलराम जी ने भाग लिया महाभारत की। महाभारत ये बड़ा विस्तारित ग्रंथ है। हमारे पास इस पृथ्वी पर जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। वैसे महाभारत में और भी कई ज़्यादा श्लोक हैं, लेकिन हमारे पास जो महाभारत है उसमें केवल 1,00,000 श्लोक पाए जाते हैं। और उनमें बलराम जी ने कई लीलाओं में भाग लिया। बलराम जी का प्रेम शुरुआत से कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति समान रहा। जितना प्रेम वे भीम से करते थे उतना ही दुर्योधन से करते थे। या ये कहना गलत नहीं होगा कि दुर्योधन से थोड़ा ज्यादा प्रेम करते थे। दुर्योधन उनका शिष्य था, उसने सीखी थी गदा चलाना उनसे, तो बड़ा थोड़ा ज्यादा प्रेम था। तो खैर, दोनों से प्रेम था, दोनों तरफ बराबर बनाए रखते थे। और यही कारण था कि जब आगे चलकर दोनों में युद्ध हुआ, कौरवों में और पांडवों में, तो बलराम जी ने किसी की तरफ से युद्ध नहीं किया। क्योंकि किसकी तरफ से करते? अगर युधिष्ठिर से करते, युधिष्ठिर की तरफ से, तो फिर अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन को मारना पड़ता। और अगर दुर्योधन की तरफ से करते तो श्री कृष्ण का विरोध करना पड़ता। तो इसलिए बलराम जी ने किसी की तरफ से युद्ध नहीं किया। वे उस समय तीर्थ यात्रा पर चले गए और जब वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे उस समय पर, तो बहुत सुंदर वर्णन है कि वे एक स्थान पर पहुंचे नैमिषारण्य में, जहां चर्चा हो रही थी पुराणों की, और रोमहर्षण सूत वो बैठे हुए कथा कर रहे थे, व्यास आसन पर बैठे थे। जैसे ही बलराम जी ने प्रवेश किया, सभी लोग उठकर खड़े हो गए। ये नियम है कि जब कोई महान वैष्णव आए तो उठकर खड़े हो जाना चाहिए, और यहाँ तो महान वैष्णव नहीं, स्वयं बलराम जी आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं, तो सभी उठकर खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। लेकिन रोमहर्षण सूत ये उठे नहीं। इनके मन में थोड़ी सी भावना थी कि मुझे उठने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो व्यास आसन पर मैं बैठा हूं, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है उठने की। लेकिन बलराम जी ने जब ये देखा कि इनके हृदय में थोड़ा अहंकार आ गया है, ये गलत भावना आ गई है, तो उन्होंने घास का तिनका लिया और उसका स्पर्श करके मार दिया, हत्या कर दी। देखिए, अभी हम कुछ समय पहले वर्णन कर रहे थे कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि किसी को घास के तिनका लेकर मार देंगे, लेकिन भगवान कर सकते हैं। बहुत सुंदर कथा श्रील प्रभुपाद जी समझाया करते थे इस श्रद्धा, इस विश्वास के लिए, कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, भगवान से मिलने। ब्राह्मण ने कहा, बस मेरी एक प्रार्थना है, पूछ लीजिएगा कब मुक्ति होगी मेरी। नारद मुनि आगे बढ़े तो उनको वहाँ एक मोची मिला, वो भी भगवान का भक्त था। उसने भी प्रणाम किया और कहा, नारद मुनि से, भगवान से पूछ लीजिए मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि पहुँचे, भगवान से वार्तालाप हुआ, भगवान से पूछा, दो व्यक्ति मिले थे, पूछ रहे थे मुक्ति कब होगी। तो भगवान ने कहा कि वो जो मोची है वो तो इसी जन्म में आ जाएगा, लेकिन ये जो ब्राह्मण है कई जन्म लगेंगे। नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण जो रोज पूजा पाठ में लगा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, ऊंचे कुल का है, वो कई जन्म लगेंगे, और ये मोची चमड़े का काम करने वाला न पूजा पाठ कर रहा, न यज्ञ कर रहा है, कुल भी इसका बड़ा नीचे है, ये कैसे आएगा। तो भगवान जान गए। भगवान ने नारद मुनि से कहा कि जब नीचे जाओगे दोनों आपसे पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो कहना कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। अब सुई के छेद में से हाथी कैसे निकल सकता है? तो खैर, नारद मुनि गए, ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण ने पूछा, क्या कर रहे थे भगवान? तो उन्होंने कहा कि सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। अब आप सब जानते हैं कि जब सुई होती है उसमें धागा डालने में भी हम लोगों को कठिनाई होती है, और यहाँ हाथी को निकालना। तो ब्राह्मण ने कहा नारद मुनि से कि हमें तो लगता है कि आप गए ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और जब नारद मुनि मोची के पास गए, मोची बैठा था पेड़ के नीचे, मोची ने पूछा भगवान क्या कर रहे थे, नारद मुनि ने वही उत्तर दिया, सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। सुनकर मोची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा कि अरे, तुम्हें विश्वास है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या कभी इतने छोटे से छेद में से हाथी निकल सकता है? तो उस मोची ने कहा कि देखिए, मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, इतना विशाल पेड़ है ये, जब मेरे भगवान इतने बड़े पेड़ को एक छोटे से बीज में डाल सकते हैं, तो क्या वो छोटे से छेद से हाथी को नहीं निकाल सकते? तब नारद मुनि को समझ में आया कि कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा है इस मोची को, और वो विश्वास, वो श्रद्धा ब्राह्मण को नहीं थी। तो इसीलिए श्रद्धा की बात है कि किस तरह भगवान कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि भगवान बलराम जी ने केवल एक घास का तिनका लेकर बड़ी आसानी से रोमहर्षण सूत उसकी हत्या कर दी। तो वहाँ उपस्थित सारे जो ऋषि मुनि थे वो कहने लगे, अरे अरे, ये तो कथा सुना रहे थे हमें, आपने वध कर दिया, अब क्या होगा? तो बलराम जी ने कहा कि ठीक है, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो मैं इसे पुनर्जीवित कर देता हूँ। तो सारे ऋषि मुनियों ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप जो करते हैं वो तो एकदम सही है, हम ये नहीं कह रहे कि आपने गलत किया, हम तो ये कह रहे हैं कि अब हमें कथा कौन सुनाएंगे। तो बलराम जी ने कहा, एक काम करो, इनके पुत्र को बुलाओ, क्योंकि पिता पुत्र के रूप में जीवित रहता है, तो उनको बुलाओ और वो बैठकर कथा करेंगे। तो रोमहर्षण के पुत्र आए जिन्होंने फिर आगे कथा की, जिनको हम लोग कई बार सुनते, सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा, तो फिर उन्होंने वो कथा की। तो ऐसे बलराम जी ने महाभारत में दोनों को समान देखा। तो बहुत सी लीलाओं में बलराम जी का वर्णन आता है कि कैसे बलराम जी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। आए तो थे बड़े भाई के रूप में, लेकिन फिर भी बात वही करते थे जो श्री कृष्ण कहते थे। इसका बड़ा सुंदर वर्णन सुभद्रा हरण के समय आता है। हुआ ये था कि अर्जुन वन में भटक जा रहे थे, एक वर्ष के लिए पूरा उनको वन में घूमना था अकेले। तो वो वन में थे, अलग अलग जगह पे थे, और चलते चलते फिर वो कृष्ण के पास भी आए, कृष्ण से भेंट हुई। तो कृष्ण चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो, और बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। और वो कृष्ण चाहते नहीं थे, लेकिन बड़े भाई थे बलराम जी, कुछ कह नहीं सकते थे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ सन्यासी के रूप में रहो, क्योंकि अर्जुन घूम रहे थे एक वनवासी के रूप में, उनका वेश दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, तो एक सन्यासी जैसे लग रहे थे। तो कहा यहाँ सन्यासी के रूप में रहो, और जब अवसर मिले सुभद्रा का हरण कर लेना। देखिए, अपनी ही बहन का हरण करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे क्या सही है। तो फिर अर्जुन जब आए तो बलराम जी भी वहाँ थे, तो कृष्ण ने कहा कि देखिए एक साधु आए हैं, ये इनको कुछ समय रहेंगे यहाँ, तो इनकी सेवा होनी चाहिए अच्छे से। तो उस समय अर्जुन को देखकर उनको लगा ठीक है, कोई सन्यासी है, हाँ अट्टा कट्टा है लेकिन है, सन्यासी है। तो फिर उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, सुभद्रा इनकी सेवा करेगी ताकि उसको भी आशीर्वाद मिले। तो सुभद्रा को कहा कि इनकी सेवा करना, तो श्री कृष्ण तो चाहते ही यही थे। तो सुभद्रा सेवा करने लगी, धीरे धीरे प्रेम हो गया दोनों में, स्वाभाविक था, क्योंकि ना तो ये साधु थे अर्जुन, कोई साधु या वैरागी तो थे नहीं, तो वे तो क्षत्रिय थे। तो जब समय आया तो श्री कृष्ण ने व्यवस्था की कि जाओ हरण कर लो सुभद्रा का। तो सुभद्रा का हरण हो गया, और सारे जगह हाहाकार हो गया पूरे द्वारका में, ये क्या हो गया। तो सब आए, सारे सेनापति सब मिलकर बैठे कि हम छोड़ेंगे नहीं कौरवों को। बलराम जी ने भी कहा ये कौरव अपने आप को समझते क्या हैं, ये कुरुवंशी, ये सोचते हैं बड़े अंधकार में हैं, बड़े अज्ञान में हैं, ये सोचते हैं हमारी कोई शक्ति नहीं है, और इनको इतना अहंकार हो गया अपने बल का। तो ऐसे जब सब बात कर रहे थे, कृष्ण आराम से बैठे थे, तो बलराम जी भी हैं, अन्य लोग हैं कि चलो तैयारी करो, सेना को तैयार करो, अभी जाएंगे उनको, उनको हरा के आएंगे। तो बलराम जी ने देखा कि श्री कृष्ण कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो बहुत शोर हो रहा था, तो बलराम जी ने कहा अच्छा अच्छा सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। और फिर उन्होंने कहा अब कृष्ण बोलेंगे, अब हमने कृष्ण से सुनना है क्या करना चाहिए। तो उस समय श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम आप सबके भावों को समझ रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, पहली चीज किसने अपहरण किया है हमारी बहन का, कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अर्जुन जो इस समय पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और फिर वंश भी इतना बड़ा है, अगर हम उस वंश में संबंध स्थापित कर लेते हैं तो ये हमारा गुणगान होगा। और दूसरी बात जान लीजिए, अर्जुन अकेला सक्षम है, बहुत सारे दिव्यास्त्रों को लेकर आया है, अकेला सक्षम है कि वो हम सबको हरा सकता है। अभी तो अगर हम जाकर संबंध स्थापित कर लेते हैं तो हमारे परिवार का गुणगान बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हमने युद्ध किया और अर्जुन ने हमें हरा दिया, तब आप सोचिए क्या होगा, हम सबकी नाक कट जाएगी। तो सारे लोग वहां उपस्थित थे, बलराम जी भी थे, तो सभी कहने लगे हाँ ये बात तो सही है, हमने तो ये सोचा नहीं। कृष्ण बोलने में बड़े दक्ष हैं, जब वो बोलते हैं तो उनके सामने जितने लोग हैं वो सब परास्त हो जाते हैं। कृष्ण को अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, केवल शब्दों से वो परास्त कर देते हैं लोगों को। तो सभी लोगों ने स्वीकार किया, और फिर सब बहुत बड़ा दहेज इत्यादि लेकर, धन इत्यादि लेकर सब लोग गए, और फिर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। तो बलराम जी ने इस तरह उस विवाह में भी भाग लिया। वैसे अगर देखा जाए तो बलराम जी ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह में भी भाग लिया था। ये भी बड़ी सुंदर घटना है। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा श्री कृष्ण को, क्योंकि रुक्मिणी का विवाह उसके भाई के कारण, रुक्मी के कारण शिशुपाल से तय हो गया था, क्योंकि रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष करता था। हालांकि रुक्मिणी के पिता वे चाहते थे कि श्री कृष्ण से विवाह हो मेरी पुत्री का, लेकिन लड़का इतना कह रहा था तो कुछ बोल नहीं पाए। तो खैर विवाह निश्चित हो गया, अब विवाह होने वाला है। तो रुक्मिणी ने पत्र भेजा श्री कृष्ण को कि परसों बस विवाह है, 2 दिन में विवाह है, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी, मैंने तो अपना हृदय आपको दिया है, इसीलिए आप आइए। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा, और उसमें पत्र में रोहिणी ने सब कुछ लिखा था कि हम सुबह विवाह के दिन मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर में पूजा होती है, और पूजा के बाद जब बाहर आएंगे तब आप हमारा हरण कर लेना, सब कुछ लिख कर दिया था। तो श्री कृष्ण भी आतुर थे, जिस तरह रुक्मिणी देवी आतुर थी कृष्ण की प्राप्ति के लिए, उसी तरह कृष्ण भी आतुर थे रुक्मिणी देवी को प्राप्त करने के लिए। ये हमारे लिए संदेश है कि जितनी आतुरता हमारे अंदर होगी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उतनी ही आतुरता, या कहना चाहिए उससे कहीं अधिक आतुरता श्री कृष्ण के अधिक अंदर होगी हम सबको प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए हमें कृष्ण को पाने की अपनी तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। तो खैर रुक्मिणी ने पत्र लिखा, भगवान पहुंच गए, और जब श्री कृष्ण जा रहे थे वो अकेले चले गए रथ पर, बलराम जी को पता चला तो बलराम जी पूरी सेना लेकर गए, क्योंकि बलराम जी जानते थे कि वहां युद्ध होगा। वैसे उन्हें विश्वास था कि कृष्ण अकेले ही सबको मार सकते हैं, लेकिन फिर भी बलराम जी ने कहा हमें भी जाना चाहिए, तो सारी सेना लेकर गए। अब रुक्मिणी देवी का हरण हुआ। रुक्मिणी देवी जैसे उन्होंने लिखा था वो मंदिर गई, मंदिर से बाहर निकली, जैसे ही बाहर आई, अभी तक उन्होंने अपने मुख को ढक रखा था, लेकिन अब उन्होंने मुख को, क्योंकि कृष्ण को देखना था तो मुख पर से उन्होंने जो कपड़ा था उसको हटाया, तो जब पहली बार वहां उपस्थित लोगों ने रुक्मिणी के सौंदर्य को देखा, चाहे शिशुपाल हो या अन्य राजा हो, तो वे सब चकित रह गए उसके सौंदर्य को देखकर। वर्णन तो इतना है कि इतना सौंदर्य था कि उस सौंदर्य को देखकर प्रायः मूर्छित हो गए। और ऐसी अवस्था में श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को उठाया और अपने रथ पर लेकर निकल पड़े। तो फिर सारे राजाओं को होश आया, अरे ये क्या हुआ, सब भागे पीछे पीछे। तो उस समय बलराम जी ने सबको रोक लिया, कृष्ण चले गए लेकर रुक्मिणी को, और फिर बलराम जी ने सबको रोक लिया और उनको युद्ध में परास्त किया। केवल रुक्मी दूसरे मार्ग से पीछे पीछे गया था श्री कृष्ण के, क्योंकि रुक्मी ने कहा कि मैं लेकर आऊंगा अपनी बहन को वापस, ये कैसा हमारे ऊपर उन्होंने कार्य किया है, बड़े अपमान की बात है, और अगर मैं वापस नहीं आया, लेकर नहीं आ सका, तो वापस नहीं आऊंगा इस राज्य में। तो रुक्मी भी गए। अब जब रुक्मी गए तो श्री कृष्ण को उन्होंने चुनौती दी कि श्री कृष्ण रुको, तो कृष्ण रुके, युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध हो रहा है और अब सोचिए विवाह का समय, बस विवाह करने वाले हैं रुक्मिणी से, और यहाँ पर युद्ध हो रहा है उसी के भाई से। और फिर भगवान ने तलवार निकाली श्री कृष्ण ने, और मारने ही वाले थे रुक्मी को कि रुक्मिणी ने प्रार्थना की, भाई है मेरा, क्षमा कर दीजिए। तो उस समय उन्होंने अपमान कर दिया, रुक्मी के बालों को काट दिया अलग अलग जगह से, उसको बड़ा दिखने में बहुत अजीब लगने लगा। तो उस समय बलराम जी ने आकर ये देखा कि अरे ये क्या हो गया, एक तरफ तो रुक्मिणी है जो दुखी है और यहाँ ऐसे कर दिया देखकर। तो फिर उन्होंने कृष्ण को डांटा, ये तुमने ठीक नहीं किया, और फिर रुक्मिणी से भी कहा कि कोई बात नहीं, ये जो तुम्हारा भाई है, भले तुम्हारा भाई है लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं कर रहा था, इसने गलत किया था। तो ऐसे उस समय बलराम जी ने दोनों तरफ थोड़ा बहुत कृष्ण को कहते, फिर थोड़ा रुक्मिणी को कहते, तो दोनों को संभाला ताकि ऐसा ना हो कि विवाह के समय ही दोनों के संबंध खराब हो जाएं। तो ऐसे रुक्मिणी विवाह में भी बलराम जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। महाभारत के अन्य कई लीलाओं में बलराम जी अपनी लीलाओं को या अपने भाग को करते हैं। आगे फिर कभी इन लीलाओं का भी श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।